भाग पांच, राज्य की संप्रभुता। राज्य एक दूसरे राज्य से क्या संबंध होता है, उसका अपने नागरिकों से क्या संबंध होता है, तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदायों से पृथक करता है तथा जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। गेटिल, जनता, प्रदेश, सरकार व संप्रभुता। राज्य के चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनेक कारण हैं। पहले तो इसकी महत्ता इसलिए है कि यह राज्य की एक ऐसी विशेषता का सूचक है जिसके द्वारा राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न समझा जा सकता है। दूसरे, इसके द्वारा राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता है और इस प्रकार इस राज्य की सरकार के कानूनों व आदेशों की सार्थकता व शक्ति प्राप्त हो जाती है। फलतः लोग उसका पालन करते हैं। अंत में इसके द्वारा राज्य के निवासियों में एकता की भावना का अनुभव प्रादुर्भाव होता है क्योंकि वे सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के अधीनता में रहकर एकता का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि राज्य और शासन के अध्ययन के साथ साथ संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन भी अत्यंत आवश्यक है। राजनीति शास्त्र में संप्रभुता नामक तत्व अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यदि कहा जाए तो यह असत्य नहीं होगा कि यही एकमात्र ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य संघों से अलग करता है। संप्रभुता शब्द की व्याख्या और इसके विकास की एक लंबी कहानी है। संप्रभुत सत्ता राज्य का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बिना राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि राजनीति शास्त्र में यही तत्व सर्वाधिक विवाद प्रस्त और चर्चा का विषय बना रहा है। ऑस्टिन के विचारों के मुख्य आलोचकों में सर हेनरी मेन ब्लंसुली तथा लॉर्ड बाइस के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने जिन आधारों पर ऑस्टिन के आलोचना की है उनमें से निम्न प्रमुख हैं। पहला, संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सॉर वर्निटी लेटिन भाषा में सुपरनेस लिया गया है जिसका अर्थ उस भाषा में सुपर इक्वल टू सुप्रीम प्लस एनुस सुप्रीम अथवा पावच या सर्वोच्च शक्ति होता है। राजनीति शास्त्र के पारिभाषिक शब्द के रूप में सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति से होता है। संप्रभुता के इस अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है। साधारणतः सामान्य संप्रभुता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता कार्यक्षेत्र की दृष्टि से संप्रभुता का यह तात्पर्य होता है कि राज्य व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समुदायों से उच्चतर संस्था है। वह जैसे चाहे उन्हें कानून व आदेश के रूप में आज्ञा दे सकता है और अपनी आज्ञाओं को उनसे मनवा सकता है। इस प्रकार आंतरिक संप्रभुता एक निश्चित प्रदेश में राज्य की एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जो सब शक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह को आज्ञा दे सकती है और अपना आज्ञा का पालन उन सब से करवा सकती है। व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय को ऐसा कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता कि वे उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य कर सके अथवा उसके विरुद्ध कोई अपील अन्यत्र कर सके। दूसरे शब्दों में राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों पर उसका नियंत्रण रहता है। अनेक राजनीतिक विचारों ने संप्रभुता के उस आंतरिक पहलू के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरणतः लॉस्की ने कहा है कि यह प्रदेश के सब मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसे उनमें कोई आज्ञा नहीं देता। उसकी इच्छा पर कोई किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र से ही वह उसे किसी कार्य का करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संप्रभुता का आंतरिक स्वरूप क्या है, इस संबंध में गवर्नर ने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण स्वतंत्र राज्य में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, सभा अथवा समुदाय होता है जिसे कानून के रूप में सामूहिक इच्छा का निर्माण करने व उसे क्रियावंती करने की सर्वोच्च शक्ति अर्थात आज्ञा देने व उसे पालन करने का अंतिम शक्ति प्राप्त होता है। गेटिन ने भी संप्रभुता के विषय में यह कहा है कि उसका संबंध वस्तुतः राज्य व उसके निवासियों के आंतरिक संबंधों से ही है। उन्होंने कहा है कि यदि उचित रूप से कहा जाए तो संप्रभुता का संबंध राज्य व उसके निवासियों के संबंध से है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का शब्द ना होकर संवैधानिक कानून का शब्द है। यह कानून विचार है और उसका संबंध विधिपरक कानून से है। इस तरह से संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। बाहरी संप्रभुता, जहाँ तक राज्य के बाहरी कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, संप्रभुता का अर्थ राज्य की उस सर्वोच्चता से है जिसके कारण उसकी इच्छा बाहरी क्षेत्र में किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होती, अर्थात उसे इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह विदेशों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित करे, चाहे वह अन्य किसी देश से मैत्री के संबंध स्थापित करे या युद्ध के संबंध स्थापित करे अथवा वह उसके प्रति तटस्थ नीति का अनुसरण करे। लॉस्की ने राज्य की संप्रभुता के इसी बाहरी रूप की और संकेत करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य प्रमुख संपन्न राज्य हैं, अतः वह अन्य राष्ट्रियों के समक्ष स्वतंत्र होता है। उनके मामलों में वह अपनी इच्छा को इस प्रकार व्यक्त करता है कि उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। गेटिल के मतानुसार संप्रभुता का बाहरी रूप विदेशी राज्यों से व्यवहार के विषय में आंतरिक संप्रभुता की अभिव्यक्ति मात्र है। उसके अनुसार जिसे हम बाहरी संप्रभुता कहते हैं वह वस्तुतः अधिकारों की वह पुण्यता है जिसके द्वारा विदेशी राज्यों से व्यवहारों के विषय में आंतरिक संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार गेटिल के विचार संप्रभुता के बाहरी रूप के विषय में अन्य लेखकों से कुछ भिन्नता लिए हुए हैं। उन्होंने राज्य की बाहरी संप्रभुता के दो अर्थ लिए हैं। बाहरी संप्रभुता के उनके पहले अर्थ का संबंध उस शक्ति से है जिसके द्वारा राज्य अन्य राज्यों से व्यवहार करता है, युद्ध घोषित करता है, संधि स्थापित करता है। उसके दूसरे का अर्थ संबंध स्वतंत्रता के उस अधिकार से है जिसके कारण राज्य अन्य राज्यों के नियंत्रण व उसकी अधीनता से मुक्त रहता है। गेटिल ने बाहरी संप्रभुता को केवल दूसरे अर्थ में ठीक माना है, क्योंकि पहले अर्थ को मानने का तात्पर्य यह होता है कि राज्य को अन्य राज्यों की भूमि में भी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जो उचित नहीं कहा जा सकता। परंतु दूसरे अर्थ का यह तात्पर्य लगाना वस्तुतः वास्तविकता के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों में जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने की शक्ति प्राप्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके द्वारा एक राज्य को अन्य राज्यों की भूमि में भी सर्वोच्चता के अधिकार प्राप्त हुए हैं, अपितु उसका अर्थ केवल यही है कि उसे अन्य राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित करने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार गेटिल ने बाहरी संप्रभुता के जो दो अर्थ लिए हैं वस्तुतः इनका अभिप्राय एक ही है, और वह है यह है कि बाहरी दृष्टि से राज्य की संप्रभुता का अर्थ यह है कि वह अन्य राज्यों से व्यवहार करने में पूर्ण स्वतंत्र होता है और अन्य राज्यों के किसी दबाव के बिना वह अपने वैदेशिक संबंधों का संचालन कर सकता है। इस प्रकार संप्रभुता के आंतरिक व बाहरी रूप से संबंधित उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सीधे सीधे शब्दों में संप्रभुता का तात्पर्य राज्य की आंतरिक सर्वोपरिता वह बाहरी स्वतंत्रता से होता है। बाहरी स्वतंत्रता से ही उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व सामने आता है।